समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश विदेश के समाचार जानेंगे, क्षेत्रीय संवाददाताओं से जुड़ेंगे, खेल मैदान आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी, तो बहुत कुछ रहेगा आज के अंक में। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका। Priyanka, it's 21st of May today and we are here with a fresh new episode of Parikrama with some interesting special days being observed today. It's International Tea Day today, one beverage with differing but easily distinguishable names which has the world wrapped around its little finger. It works as a morning refresher, as a day-long pick-me-up and also as a post-sunset fatigue buster. Whatever you may call it, but tea isn't just a beverage anymore. It has plopped into food and dessert too. We will talk about it in detail in our Dateline segment today, but it is also Anti-Terrorism Day today in our country, which is observed on May 21st every year to commemorate the death anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi, the sixth Prime Minister of India, who was assassinated on this day in 1991. Along with it, we also observe every year on May 21st the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, urging everyone to do their part to bridge the gap between cultures. But first, Priyanka, the news making headlines at this hour.
लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिए प्रचार जोर शोर से जारी। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में मोतिहारी में कांग्रेस पर वंशवादी पार्टी होने का आरोप लगाया।
दिल्ली कोर्ट एक्सटेंड्स जुडिशियल कस्टडी ऑफ एएपी लीडर मनीष सिसोदिया टिल 31st ऑफ मई इन दिल्ली लिकर पॉलिसी केस।
ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव होंगे।
India's Ekta Bhyan secures gold medal in women's F51 club throw competition at World Para Athletic Championships at Kobe in Japan.
और हॉकी में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने बेल्जियम में जीत के साथ यूरोप का दौरा शुरू किया।
And yes, Priyanka, now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And of course, we talked about it earlier. We will discuss on International Tea Day and also on Cultural Diversity Day. Priyanka, made from the Camellia sinensis plant, tea is the world's most consumed drink after water. There is evidence that tea was consumed in China 5,000 years ago. Today, globally, the tea market is valued at $122 billion and expected to rise to $160 billion by 2028. International Tea Day is observed annually on 21st of May to raise awareness of the long history and the deep cultural and economic significance of tea around the world. In India, chai or tea is not just a beverage, but a lifestyle ritual with which many people begin their day.
बिल्कुल। और किसी ने क्या खूब लिखा है अनुजा कि इंतजार का वक्त इतना प्यारा न होता अगर साथ में चाय का सहारा न होता। जी हाँ, भारत में चाय की दीवानगी हर जगह देखने को मिल जाएगी। भीषण गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, चाय की चुस्कियां लगाने वाले मिल ही जाते हैं। चाय की अपनी अलग ही महफिल भी होती है, जहां हाथ में चाय का ग्लास और ढेर सारी बातें होती हैं। ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है। चाय दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय ड्रिंक है, पेय पदार्थ है। चाय की खेती कई सारे देशों में आजीविका का मुख्य साधन है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को चाय पीने के फायदे बताने के साथ ही चाय की खपत को बढ़ावा भी देना है। असम भारत का पहला राज्य था जहां चाय के बागान लगाए गए थे।
Right, so from street side cutting chai to gourmet infused brews, tea reaches people across the country. India is the second largest producer of tea in the world right after China, and there are several homegrown brands that are working hard to innovate with regional flavors while also focusing on sustainability and farmer involvement. The tea economy is evolving towards modernization and innovation, and specialty teas and unique blends are also on the rise. rise these days. Young people are driving this shift towards more artisanal and personal tea experiences. Tea bars and cafes are now popping up all over the country, catering to the growing demand.
बिल्कुल तरह तरह की चाय के फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं अनुजा, चाहे हम हर्बल टी की बात करें, हम लेमन टी यानी नींबू की चाय की बात करें, गुलाब की चाय की बात करें, अदरक की चाय, इलायची की चाय, सबके अपने अपने फायदे हैं, गुण हैं और साथ में ये आपको तरोताजा भी करती हैं। और आपको बता दें कि सीमित मात्रा में चाय पीने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। इससे पीने से तन और मन तो तरोताजा होता ही है, साथ ही चाय है माना जाता है कि हार्ट से यानी हृदय से जुड़ी समस्याओं में भी फायदेमंद है अगर सीमित मात्रा में ली जाए। सर्दी जुकाम में आराम दिलाने के अलावा चाय डायबिटीज कंट्रोल करने और सिरदर्द दूर करने में भी असरदार है। लेकिन क्या आपको पता है कि चाय की खोज अनजाने में हुई थी? पहली बार 2737 ईसा पूर्व में उबलते हुए पानी में कुछ पत्तियां आकर गिर गईं, जिसकी वजह से पानी का रंग बदल गया था और जब इसे पिया गया तो पीने वाले को तरोताजा महसूस हुआ। बस इसी प्रकार चाय की खोज हुई।
राइट, एंड द चाइनीज एंड द बर्मीज हैव बीन यूजिंग टी एज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन देयर कुकिंग एज वेल। पेयरिंग फूड विद टी गोज बैक टू द विक्टोरियन एरा। द फॉर्मल आफ्टरनून टी वॉज पॉपुलर अमंग द एलीट एंड वॉज पेयर्ड विद स्मॉल portions of baked fruit like scones, fruit cakes and sandwiches. Actually, Priyanka, the idea behind celebrating this day, International Tea Day, is to create awareness about the demand of this global drink, which is the second most consumed beverage after water in the world. On this day, communities and governing bodies organize seminars and events that talk about the growth and numerous challenges that the industry is facing in terms of growth of farmers and other problems like less pay, no medical care and lack of clean water on the farm, among others. While there is no specific theme for the year 2024 this time, the focus remains on promoting sustainable production and also responsible consumption of tea.
जी हाँ, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में असम की जो रोंगा सा है ये असम के चाय बागानों में उगने वाली खास चाय होती है और ये हल्के भूरे और लाल रंग की होती है। इसके अलावा बंगाल की दार्जिलिंग की चाय काफी फेमस है, तमिलनाडु की नीलगिरी चाय, ये इसे नीलगिरी की पहाड़ियों में ही उगाया जाता है और इसमें फूट के साथ मसालों का भी अच्छा फ्लेवर आता है। कश्मीर की नून चाय, कश्मीर चार अन्य राज्यों की चाय से अलग होती है और इसे कश्मीरी घरों में सुबह और रात के समय पिया जाता है। तो काफी अलग अलग ड्रिंक्स हैं। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है अनुजा?
I would like to taste all of them in different timing of the day. सुबह में हमें लेकर चाय पसंद है, दोपहर आते आते या बहुत ठंड हो तो मसाला चाय।
आप कॉफी पीते हैं?
In fact, I just mentioned about tea bars and cafes. They have brought a new level of sophistication and variety to the traditional tea economy in India by offering speciality teas and unique blends. And of course, this has not only created a new market segment but has also sparked interest and curiosity among the tea enthusiasts, leading to a revival of interest in traditional teas as well.
और वैसे एक बात कही जाए कि जो चाय पीने का शौक किसको है साहब, लिखा है किसी ने, ये तो जरिया है अपनों के साथ दो पल फुर्सत में बिताने का, ये तो जरिया है अपनों की पीड़ा को एहसास कर समझने का, अपनों की खुशियों में शामिल हो खुशियों को बढ़ाने का, जीवन की आपाधापी से चोलो कुछ क्षण निकालते हैं, गुड़ की टपकी के साथ चाय की चुस्की के साथ आओ महफिल गुलजार करते हैं। तो समय भी हो रहा है चाय पीने का, आप भी चाय की चुस्कियों के साथ आनंद लीजिए कार्यक्रम परिक्रमा के साथ प्रियंका और अनुजा के साथ।
Moving on to our next topic today, Cultural Diversity Day. Today is World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. It is celebrated to highlight not only the richness of the world's cultures, but also the essential role of intercultural dialogue for achieving peace and sustainable development. With nearly 90% of all current conflicts in the world occurring in countries with low intercultural dialogue, to forge effective cooperation and sustain peace, strengthening intercultural dialogue must be a priority. And according to UNESCO, the cultural and creative sector is one of the most powerful engines of development worldwide. It accounts for more than 48 million jobs globally, almost half of which are held by women. It is also the sector that employs and provides opportunities for the largest number of young people under the age of 30.
बिल्कुल, और देखा जाए तो जो हमारा देश है वो इसी मंत्र को मानता है कि वसुधैव कुटुंबकम, विविधता में एकता हमारी संस्कृति की विशेषता है, यानी ये पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है और परिवार को संजोकर रखना हमारा दायित्व है। और आज जब हम सांस्कृतिक विविधता दिवस मना रहे हैं, इसका आयोजन दुनिया भर की संस्कृतियों की खूबियों और शांति तथा टिकाऊ विकास में भिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद की भूमिका को उजागर करने के लिए किया जाता है। और जैसा आपने अनुजा बताया भी कि माना जाता है कि दुनिया के 90% जो संघर्ष हैं वो अलग अलग संस्कृति के लोगों के बीच संवाद कम होने के कारण ही है। और हम संस्कृति की ही क्यों बात करें, अगर हम आपस में भी संवाद नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं संघर्ष का कारण
बनता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। सो वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्राई टू अकोमोडेट विद डिफरेंट पीपल एंड ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड रीजन।
और अब समय अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जुड़ने का।
Right, so in Tamil Nadu, summer time for families means having family time at hill stations, and the state is also witnessing summer rains in many southern districts. The hilly areas lying in the Western Ghats also are likely to get rains. Hilly trips during flower show is a real feast to the eyes of the tourists, and Yerakud in Salem district is one such place. We have a report on this.
Yerakud, also known as Poor Man's Ooty, is a hill station at the Cheveroy Hills. The place is gearing up for the 47th annual summer festival to be held from tomorrow to the 26th of this month. The state horticulture department has planted hundreds of flower plants, while the highway department has put fresh coats of paint on the sidewalls of the gut road as part of the festival preparations. The district administration has ensured a delightful experience for the visitors. 5 lakh colorful flowers will be used to decorate cartoon characters in the show. More than 30,000 pots of various flower seedlings will be kept in the exhibition. The department aims to present 60,000 potted flowers of exquisite varieties alongside the usual flower varieties like the Gerbara, Lovable Red Rose, Liliums, Gladiolus and Anthurium. The summer festival will also have various cultural events like boat riding competitions, musical concerts and sports events. A special sightseeing tour has also been arranged by the Tamil Nadu Tourism Development Corporation. Joy, Akashwani, reporting from Parikrama from Chennai.
जी हाँ, ऐसे जब पर्वतीय इलाकों में तो वैसे ही आनंद आता है गर्मियों में, और खासकर जब वो फूलों से गुलजार हो जाए तो उसका मजा ही दोगुना हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। औषधीय गुणों से युक्त हींग का इस्तेमाल भारतीय पकवानों में अधिकतर किया जाता है। इसके उपयोग से जहां पकवानों का स्वाद कई गुणा बढ़ जाता है, वहीं हींग के सेवन से कई बीमारियों से निजात भी मिलती है। भारत अभी तक ईरान और अफगानिस्तान से हर साल करीब 900 करोड़ रुपए से अधिक हींग आयात करता है, लेकिन अब आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी हींग की खेती व्यापक तौर पर की जाएगी, जिससे देशभर के लिए हिमाचल से हींग की आपूर्ति की जाएगी। इस बारे में खास रिपोर्ट है हमारे संवाददाता रितेश की, आइए सुनते हैं।
राज्य के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की जमीन जल्द ही हींग के पौधों से लहराएगी। ट्रायल के तौर पर देश में पहली बार उगाए गए हींग के पौधे कामयाब हुए हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति के अलावा किन्नौर, कुल्लू, मंडी और चंबा जिले के पहाड़ी क्षेत्र में हींग के बीज अंकुरित होकर पौधे के रूप में लहराने लगे हैं। लाहौल स्पीति के प्रगतिशील किसानों का मानना है कि हींग का पौधा 5 साल बाद बीज तैयार करता है और एक पौधे से करीब 10 ग्राम हींग व बीज तैयार होता है। वर्तमान में बाजार में हींग 30 से 40 हजार रूपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। हिमालय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चौहान का कहना है कि प्रदेश औषधीय गुणों से भरपूर हींग के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हींग की खेती के लिए हिमाचल के ऊंचाई वाले ढलानदार क्षेत्र बेहद उपयुक्त है। इस वर्ष इन इलाकों में करीब 14,000 हींग के पौधे वितरित किए गए हैं और किसानों को हींग की खेती करने के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया है। लाहौल स्पीति जिले के कुछ इलाकों में हींग की अच्छी उत्पादन क्षमता के दृष्टिगत यहां के किसान हींग की खेती को अपनाने लगे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार लाहौल घाटी उन्नत किस्म के आलू की पैदावार के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार अब हींग के उत्पादन के लिए भी जानी जाएगी। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जहां हींग के लिए अब भारत की अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी, वहीं हिमाचल प्रदेश देश की हींग की मांग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होगा। इसके अलावा हींग की खेती से जुड़े किसानों की आर्थिकी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
So Priyanka, the election time is going on. Five phases are already over. Sixth and seventh phases still remaining, and we are all awaiting eagerly for the 4th of June. And in this context, in our series covering profiles of key constituencies across states and union territories during the Lok Sabha elections, today we bring you a report on Tamluk parliamentary constituency in West Bengal.
Tamluk constituency will go to poll on 25th May under the sixth phase of general election to the Lok Sabha 24. There are seven assembly segments in Tamluk and all belong to Purva Mednipur district of West Bengal. The assembly segments are Tamluk, Parshpura Purva, Moina, Nanda Kumar, Mahishadal, Haldia and Nandigram. There are 18,50,000 plus voters in Tamluk constituency. Tamluk constituency once held by freedom fighters Satish Chandra Samanta and Sushil Kumar Dhara from 1952 to 1980. Tamluk sitting MP is Trinamool Congress's Dibyendu Adhikari. Trinamool Congress has fielded Devangshu Bhattacharya in this Lok Sabha election. BJP's candidate is former Calcutta High Court Justice Sri Abhijit Gangopadhyay. Congress supported CPIM candidate is Shayan Banerjee. Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
जी अनुजा, हम 4 जून की तो मतगणना की तो वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो वोटिंग होने वाली है इस शनिवार को, उसका भी बेसब्री से इंतजार है सबको। दिल्ली में उसके लिए प्रचार जोरों पर है और चुनाव जो है वो प्रचार है 23 मई की शाम को समाप्त हो जाएगा। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान 25 मई को होगा और आज हम आपको राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं पल्लवी की रिपोर्ट।
1956 में बनाई गई चांदनी चौक की संसदीय सीट क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। यह एक प्रमुख पर्यटक, धार्मिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस बार चांदनी चौक सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने के आसार हैं, क्योंकि पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस ने जयप्रकाश अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जो पहले 1984, 1989, 1996 में निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र होने के कारण इस सीट पर कारोबारी समुदाय के वोट काफी मायने रखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है, जो व्यापारियों के संगठन कैट के महासचिव हैं। खस्ता हाल बुनियादी ढांचे, प्रदूषण, पार्किंग की समस्या के साथ साथ साफ पानी और सीवेज प्रणाली जैसे कई मुद्दे भी यहाँ प्रमुख हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 16,45,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 8,83,000 पुरुष मतदाता और 7,62,000 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर 23,000 से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता और 22,000 से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
21st of May is the birth anniversary of Gandhian freedom fighter Omyo Kumar Das, who was born in 1895 in the Nagaon district of Assam. Popularly known as Lok Nayak, he was a social worker, a Gandhian by ideology, an educationist and a well-known writer. Omyo was raised by his maternal grandfather, Lakshmikant Barkakati, who was a nationalist himself and influenced the personality of young Omyo.
Omyo was studying in Tezpur High School when he took part in the 1905 Partition of Bengal movement. At the same time, he also worked as a labourer to generate the much-needed funds for the nation's needs. His nationalistic spirit was further strengthened in college when, as a volunteer in the Calcutta session of Congress, he heard stalwarts like Gandhiji, Surendranath Banerjee, Annie Besant and other speakers.
When Gandhiji launched the non-cooperation movement in 1920, Omyo worked to mobilize the youth around him to take part in the movement. During this movement, thousands of students left educational institutions. Foreign goods were boycotted, liquor and opium shops were picketed, and law codes were shunned.
In 1921, when Omyo was the General Secretary of the Tarang District Congress, the movement gained even more momentum. On one occasion, while attempting to picket a liquor shop, he was confronted with an angry woman who had come to purchase liquor. Omyo convinced her about the negative impact of liquor consumption. The woman was so inspired by Omyo that she vowed to stop consuming liquor. She then participated actively in the non-cooperation movement. That was the kind of leadership OMIU displayed.
When Gandhiji launched the civil disobedience movement in 1930, OMIU took it upon himself to mobilize the youth. He was imprisoned many times for his participation in the freedom struggle.
He was elected to Assam Legislative Assembly in 1937. He also served as a member of the Constituent Assembly. As the Labour Minister, he took the initiative to set up the Tea Plantation Workers Provident Fund for the benefit of tea plantation workers of Assam, and as the Education Minister, he reformed the education system by incorporating the concept of basic education.
OMIU was also a social reformer and popular writer. Besides writing books like Gandhiji Jibon and Ohomot Mahatma, he also translated Gandhiji's autobiography, The Story of My Experiments with Truth, into Assamese, Mor Hotto Onvokhonor Kahini. In 1963, the Government of India conferred the Padma Bhushan on him for his contributions to the nation.
OMIU Kumar Das passed away on the 23rd of January 1975, leaving behind a legacy of his commitment and patriotism. AIR News pays tribute to the great leader. We also remember Thala Singh, a resident of Mandi, Himachal Pradesh. He was a soldier in the British Indian Army. During the Second World War, Thala Singh joined the Indian National Army in Malaya and served as Havaldar. He lost his life fighting the British forces on the Burmese front on the 21st of May 1944. We salute the brave son of the soil.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar with AIR News.
And coming to the business news of the day, Indian stock market benchmarks, the Sensex and the Nifty 50, ended almost flat today in a volatile session, with Nifty managing to hold above 22,500. At close, the 30-share BSE benchmark Sensex inches 53 points or 0.07% lower, settling at 73,953. Meanwhile, NSE Nifty witnessed a gain of 27 points or 0.12% at 22,529. In the Forex market, the rupee ended at 83.31 rupees against the US dollar today. At the multi-commodity exchange, gold was trading at 73,905 rupees per 10 grams, while silver was trading at 94,249 rupees per kilogram when reports last came in.
और अब खेल के मैदान में चलते हैं. भारत की एकता भयान ने जापान में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 स्पर्धा का स्वर्ण जीत लिया है. उन्होंने 20.12 मीटर के साथ सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. भारत के ही कशिश लाखड़ा ने 14.56 मीटर के साथ रजत जीता. पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता दीप्ति ने कल महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी में 55.07 सेकेंड का विश्व रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था. ये प्रतियोगिता 25 मई तक चलेगी. उधर भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने अपने यूरोप दौरे की शुरुआत बेल्जियम पर जीत के साथ की है. भारत की ओर से उप कप्तान शारदानंद तिवारी ने 2 गोल किए. निर्धारित समय में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, जिसके बाद मैच का फैसला शूटआउट से हुआ. भारत की तरफ से गुरजोत सिंह, सौरभ आनंद कुशवाहा, दिलराज सिंह और मनमीत सिंह ने पेनल्टी शूटआउट में गोल किए और गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह ने 2 गोल बचाकर पेनल्टी शूटआउट 4-2 से जीत लिया. भारत अपना दूसरा मैच कल नीदरलैंड्स के ब्रेडा में बेल्जियम से खेलेगा. तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण आज से दक्षिण कोरिया के येचुआन में शुरू हो रहा है. भारत ने इसमें 16 सदस्यीय टीम भेजी है. पहले चरण में भारतीय दल ने 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक जीते थे. तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण रविवार को समाप्त होगा. और अब समय है जानी मानी हस्तियों को याद करने का.
And yes, from where are we starting today?
जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं जानकी देवी बजाज को, जिनकी पुण्यतिथि है. वे गांधीवादी जीवन शैली की कट्टर समर्थक रहीं. उन्होंने कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण विकास में काफी सहयोग किया. वे एक स्वावलंबी महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था. उनके व्यक्तित्व में एक विरोधाभास सा था. जानकी देवी बजाज जहां दानी, मितव्ययी और कठोर थी, वहीं दूसरी ओर दयालु भी बहुत थी. जानकी देवी बजाज के आजीवन किए गए कार्यों को सम्मानित करने के लिए 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था.
Right, the noted Gandhian Sundarlal Bahuguna, known for the leading CHIPCO in the 1970s and the anti-Tehri Dam movement in the 1990s, breathed his last on 21st of May in the year 2021. He practiced a simple and sustainable lifestyle, inspiring many who immensely contributed to the cause. Bahuguna advocated for an integrated and pragmatic approach for the conservation of the entire Himalayan belt and foot marched almost 5,000 kilometers from Kashmir in northern India to Kohima in eastern India. And with his demise, India has lost one of the finest environmentalists and social workers who had also been a part of India's freedom movement. Of course, you must be remembering the CHIPCO movement.
उसे कौन भुला सकता है? इतना बड़ा आंदोलन था वो हमारे देश का संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए. कैसे, मतलब सारी महिलाएं जो थी वो पेड़ के साथ चिपक गई थी कि इसे ना काटा.
Absolutely. And Bahuguna also worked to improve the plight of the hill people, especially working women, and was associated with temperance movements and earlier on with struggles against caste discrimination. Of course, he was awarded with Padma Shri and Padma Vibhushan also, and also the Jamna Lal Bajaj Award for constructive work.
और अब आगे बढ़ते हैं. आज विश्व विख्यात व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी की जयंती है. 1921 में आज ही के दिन उज्जैन में उनका जन्म हुआ था. उन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों पर उंगली उठाई और अपनी पैनी नजर से उनका सटीक विश्लेषण किया. उनके व्यंग्य संग्रह की बात करें तो उनमें परिक्रमा, किसी बहाने, यथासंभव शामिल है. शरद जोशी ने छोटी सी बात, उड़ान, दिल है कि मानता नहीं और उत्सव जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे. टेलीविजन के लिए उन्होंने विक्रम बैताल, ये जो है जिंदगी जैसे धारावाहिक लिखे. उनकी कहानियों और व्यंग्य पर आधारित लापता गंज शरद जोशी की कहानियों का पता भी बहुत ही लोकप्रिय है और उन्हें पद्मश्री सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.
Yes, and today is also the birthday of Mohanlal, an unstoppable thespian and living legend, an actor who has mesmerized the audience with over 400 films. He's a legend and a spectrum of acting. The actor, who is celebrating his 64th birthday today, has offered a millennium's worth of emotions and memories to many till now, and to be forever remembered as well. The 1990s of Mohanlal's filmography not only saw the rise of a superstar in commercial cinema, but also how someone who is passionate about acting balances genres like drama, comedy, action, and even tragedy to its very core. The actor may play a murderous widower in a film, and then he has also played a goofy comedian in another movie.
और आज जन्मदिन है यश चोपड़ा के पुत्र और जाने माने निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता के साथ बतौर सहायक निर्देशक के रूप में की और स्वतंत्र रूप से उनकी पहली फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसके किरदार राज और सिमरन आज भी उतने ही यादगार हैं हर युवा के लिए.
द इंडियन फिल्म मेकर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर एंड स्टूडियो एग्जीक्यूटिव, द पर्सन हु हैव बीन गिविंग अस अटमोस्ट एंटरटेनमेंट थ्रू ऑल हिज फिल्म्स, राइट फ्रॉम, एज यू जस्ट मेंशन्ड, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एग्जीक्यूटिव इन इंडियन एंटरटेनमेंट, द फिल्म डिविजन ऑफ इंडिया इवेंचुअली ऑनर्ड हिम विद द नेशनल अवार्ड फॉर हिज अचीवमेंट्स इन 1995, 2004, 2007 एंड 2015 एज वेल. And wishing him a very happy birthday.
और अब समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए तो आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर आप चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए, लेकिन जो उसके फायदे हैं उनको ध्यान रखें और सीमित मात्रा में उसका सेवन करें ताकि आप उसके जो गुण हैं उसको भी ले सके और तरोताजा भी रह सके। तो अब अनुमति दीजिए प्रियंका और अनुजा को कार्यक्रम यही संपन्न करने की। कल फिर से मुलाकात होगी ठीक 4:30 बजे। बने रहिए आकाशवाणी के साथ।
नमस्कार।